我们上帝，आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले तो हम सभी एक हाथ की ताली से भाई का स्वागत करते हैं। सतीश भाई को देख के मैं समझती हूँ सभी का दिल धड़क रहा होगा, रुका तो नहीं होगा लेकिन बराबर धड़क रहा होगा। और सही अर्थों में कहूं तो आप बाप समान, दिलाराम, सबके दिल को आराम पहुंचाने वाले, दिल को सुकून पहुंचाने वाले। भाई 1986 से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, 1995 से ग्लोबल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन, तीनों ही स्थानों पर फैकल्टी मेंबर के रूप में भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस क्षेत्र में आपने बहुत से कार्य किए हैं और उन कार्यों को देखकर 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजित किया गया। साथ ही 2008 में भी एक्सलेंस इन कार्डियोलॉजी इस अवार्ड से भी आपको प्रतिभा पाटिल जी ने नवाजा। ऐसे कई अवार्ड जो आपको समय प्रति समय प्राप्त होते रहे और यहां भी आबू में भी समय समय पर आप कैड के प्रोग्राम करते हैं और जिसमें मेडिटेशन, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, इन तीनों के माध्यम से कैसे ब्लॉकेज को ठीक किया जाए उस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट आते हैं, हार्ट के पेशेंट यहां आते हैं, शायद कोई रोते हुए आते होंगे, कोई उदास होकर आते होंगे, कई होपलेस होकर आते हैं, लेकिन जब यहां कैट का प्रोग्राम अटेंड करके जाते हैं तो बहुत खुशी खुशी से यहां से जाते हैं। तो भाई तो हमेशा यही कहते हैं कि दिल बाबा के पास रख दो तो बाईपास से बच जाएंगे, है ना? दिल बाप के पास रख दो तो बाईपास से बच जाएंगे। तो भाई का परिचय देना तो ना सागर को गागर में भरने के समान है। तो आज जैसे बाबा हमको भिन्न भिन्न स्वरूप में स्थित होने के लिए कहते हैं, अलग अलग स्थिति का अभ्यास करने के लिए कहते हैं, तो आज हम अपनी ज्वाला स्वरूप याद कैसे बनाएं, इस विषय पर हम भाई से सुनेंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी,
ओम शांति। आप सभी ज्ञान सरोवर के रूहानी वातावरण में बहुत अच्छी भट्टी कर रहे हैं और इसी भट्टी में मैं समझता हूं विषय बहुत ही अच्छा रहेगा, ज्वालामुखी याद, क्योंकि समय की आवश्यकता भी है ना, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कड़े संस्कार हमारे 63 जन्मों के संस्कार जो बने हैं उनको हल्के योग द्वारा मर्ज तो कर सकते हैं, दबा तो सकते हैं, किंतु वो खत्म नहीं होते, फिर समय देखकर भी वापस आ जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता, परिस्थिति देख के दब जाते हैं किंतु वापस फिर उभर आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कई बार हमें खाली दबाना नहीं आवश्यक है किंतु उसको जला देना चाहिए ना। जलाने के बाद घर में मुर्दा भी रखा हो तो क्या होता है, उसका भूत पकड़ सकता है, कभी जिंदा भी हो जाता है ना मुर्दा वापस ने, किंतु जला देने के बाद शरीर खत्म हो जाए फिर क्या होगा, वापस तो नहीं आ सकता ना फिर, ठीक है। चलो आज इसी बात का अभ्यास हम बहुत गहराई से करेंगे, किंतु मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर दोबारा से आप मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। और आज हम थोड़ा सा इसके लिए पहले थोड़ा सा ज्ञान की महीनता में जाएंगे और फिर उसके बाद कैसे फिर हम एकदम सहज अप्लाई कर सकें और सहज हम यहां से तुरंत ज्वालामुखी स्टेज में पहुंच जाए ना, क्योंकि ज्ञान की अगर गहराई होगी ना, ज्ञान की महीनता होगी तो फिर हम लोग पहुंच पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ज्ञान के ही रास्तों में कहीं रास्ता क्लियर ना हो तो क्या होता है, फिर ट्रैफिक कहीं पर ब्लॉक हो जाता है ना। चलिए एक मिनट फिर दोबारा से मन बुद्धि को एकाग्र कर लें ताकि हम इसको बहुत गहराई से समझ सकें। और खाली समझना आवश्यक नहीं है, क्या करना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए ना। सामने चपाती रखी हो, चपाती रखना काफी है क्या, खाना भी चाहिए और खा के चबाना भी चाहिए ना। कई बार तो ऐसे निकल जाता भी, फिर चबाने के बाद पेट में पचाना भी चाहिए ना, और पचा के फिर सो जाएं ऐसा भी नहीं करना चाहिए, फिर पचा के फिर उसका कर्म भी करना चाहिए ना, तब तो फायदा है ना। कई लोग खा के सो जाते फिर क्या होता है, मोटे हो जाते ना, तो मोटा भी नहीं होना ना। चलिए एक मिनट, चलिए सभी फिर दोबारा से अपनी मन बुद्धि को एकदम बाबा में लगा दें, एकदम एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्थिति हमारी अभी हो। मन में कोई भी संकल्प किसी भी प्रकार का, शाम को कहां जाना है, क्या करना है, लंच करना है, कितने बजे लंच करना है, इस सब बातों को भूल जाए अगले एक घंटे के लिए। ओम शांति। ज्वालामुखी याद द्वारा विक्रम विनाश कैसे करें, ऐसा भी टॉपिक रख सकते हैं। ज्वालामुखी याद की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले तो क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया कि ज्वालामुखी याद द्वारा ही जो 63 जन्म हमारे जो हम पाप कर्म करते आए हैं वो संस्कार का रूप धारण कर चुके, कड़े संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार की डेफिनेशन क्या है, जो भी हम कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा, आंख देखना भी कर्म है ना, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, हाथों से भी कोई कर्म करना कर्म है, कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई भी किया हुआ कर्म क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, अगर वो विकारों के वश किया हुआ है तो पाप कर्म कहलाता है ना, और अगर श्रीमत पर किया हुआ है तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। विकारों के वश या मनुष्य मत पर या परमत पर, क्योंकि आज सभी मनुष्य विकारी हैं, मनुष्य मत विकारी है, आसुरी है, तो किसी भी एक परमात्मा की श्रीमत के अलावा किसी भी मत पर, इवन किसी साधु संत के मत पर भी कार्य किया हुआ वो क्या है, क्या कहलाएगा, विकर्म कहलाएगा। ठीक है, और हमने 21वें जन्म से काम 22वें जन्म से शुरू किए, और एक 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 गलत काम कितनी बार किया होगा एक जन्म में हमने, क्रोध कितनी बार किया होगा एक जन्म में, कितनी बार करते हैं लगभग, 50 बार, 100 बार, कम से कम 1,00,000 बार तो करते होंगे ना, 1,00,000 बार तो करते होंगे, नहीं करते हमने, नहीं करते 1,00,000 बार सारे जन्म में, ज्यादा बार कर लेते ना। तो कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार लोभ किया, कितनी बार काम विकार के वश हुए, कितनी बार मोह अपना अटैचमेंट हमारा संबंधियों से रहा, लगाव झुकाव रहा, और कितनी बार हमारा अहंकार कैसे रहा। और अहंकार यानी 5 विकारों के बाल बच्चे हैं वो भी बहुत सारे हैं ना, बहुत है ना, तो वो भी उनके वश भी, जैसे चिंता है, चिंता के वश भी कर्म करना पाप कर्म है, भय के वश काम कोई भी काम करना वो भी, खाली काम करना हाथों से नहीं, देखना भी कर्म है ना, मैंने बताया, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। आप भय में खाना खा रहे हैं, चिंता में खाना खा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, विकर्म है ना। गुस्से में खाना खा रहे हैं वो भी क्या है, विकर्म है ना। तो गुस्से में किसी को देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, गुस्से की बातें सुन रहे हैं, कोई फिल्म देखो, सिनेमा को सीरियल देख रहे हैं, उसमें क्रोध दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है ना, किसी को मार रहे हैं उसमें ना, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष के वश कार्य कर रहे हैं, तो वो भी आपने सर देखा है, सुना है, किया क्या? किया नहीं, किंतु देखा ना। तो सीरियल देखना भी क्या है? सीरियल देखना भी विकर्म है कि अच्छा कर्म है? परमात्मा की श्रीमत है ना, सीरियल तो देखना ही चाहिए। नहीं, अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं ना? नहीं आते? तो ये भी विकर्म है ना। तो हमारे वो रिकॉर्ड होते रहते हैं ना सब कुछ ना? और रिकॉर्ड होके वो फिर भावनाएं हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। देखो थॉट्स जो होते हैं ना, थॉट्स विचार, जब विचार इंटेंस होते हैं तो थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इमोशंस इंटेंस हो जाती हैं तो हमारा एटीट्यूड बन जाता है, हमारी वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, फिर हम भी वैसे ही सोचने लगते हैं। देखिए आपने कोई सीरियल देखा, चलो सीरियल की बात करते हैं, सीरियल देखते हैं, आपके मन में कोई ऐसी कोई बात नहीं होती कि तो उसमें दिखाते हैं ऐसा, वो उसके साथ ऐसा करते हैं, उसके साथ ऐसा करते हैं, तो आपके मन में भावना पैदा होती है। और भावना देखते ऐसे ही सीरियल देखते देखते फिर क्या होता है, आपके मन में क्या हो जाएगा, आपकी वृत्ति, नहीं दुनिया में ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है। अब आपसे जो व्यवहार करेगा तो आपको क्या, कोई व्यक्ति व्यवहार करेगा तो आपके मन में क्या आएगा, आपका क्या एटीट्यूड बनेगा, हाँ जरूर ये मुझसे इसके ऐसा ही बात करने वाला है, बाद में ऐसा ही व्यवहार करने वाला है ना, आपकी वृत्ति बदल गई ना। तो थॉट से इमोशनल चेंज आता है, इमोशनल थॉट जब इंटेंस होते हैं तो इमोशनल चेंज आता है, इमोशनल जब इंटेंस हो जाती हैं तो एटीट्यूडनल चेंज आता है, और एटीट्यूड चेंज होने के बाद वो आपका स्मृति में फिर रिकॉर्ड हो जाता है परमानेंट संस्कार के रूप में, राइट। वो आपका बिलीफ सिस्टम भी बन जाता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ही ठीक होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ये काम बिगड़ जाएगा, अगर मैंने क्रोध नहीं किया तो ये काम बिगड़ जाएगा, अगर मैंने उसको नहीं ऐसा फोन किया वापस तो वो काम खराब हो जाएगा, है ना। चिंता तो इतनी चिंता तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, राइट। बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना? और ये बहुत हार्ड होते हैं बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करना। बिलीफ सिस्टम जैसे कहते हैं ना, किसी ने बिल्ली ने रास्ता काटा तो काम बिगड़ेगा, नहीं किसने छींक लगा दी तो काम, ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, नहीं होते हैं? होते हैं ना। या हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, लोगों को जल्दी करने के लिए नहीं कहेंगे तो लोग काम ठीक टाइम पे नहीं करके देंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम जिससे बन जाते हैं, जिसके द्वारा फिर हम उसी के वश होकर कार्य करते हैं, है ना। और वो हमारे जैसे इवन एक जो मैंने बताया आपको, वो जो हम बात कर रहे हैं ना कुछ बातें, ये बड़े बड़े विकार छोड़ना तो बहुत सहज है, घर बार छोड़ना भी सहज है, पैसा भी छोड़ना सहज है, किंतु जो कुछ जो सबसे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बल्कि इससे पहले भी एक बात मैं आपको बताऊं, ज्वालामुखी याद की जो बात कर रहा था पहले मैं, एक्चुअली मैं पहले दूसरे संस्कारों में आ गया। ज्वालामुखी याद, याद तो बहुत तरह की होती है ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिग्री होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं पहले मैं, ताकि उसको हम बाद में उसको इंटेंसली हम समझ सकेंगे। जैसे हम लकड़ियां हैं बहुत सारी, अगर लकड़ी को जलाना चाहें, गीली लकड़ी हो तो जलाएंगे तो क्या होगा, वो धुआं बनता रहेगा और बहुत देर लगेगी जलने में, और जल के भी खत्म नहीं होगी, काला काला कोला जैसा बन जाएगा और बहुत ज्यादा वैसे के वैसे वो दिखाई देंगे, है ना, काली हो जाएंगी सिर्फ, खत्म नहीं होंगे। किंतु लकड़ी सूख जाए तो फिर जलाए तो जलेंगी। जैसे सपोज हम अगर डेड बॉडी भी जलाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं लकड़ी पर रख के, 3-4 घंटे लग जाते हैं जलने में पूरी तरह से ना? और वही अगर हम उसमें जलाएं इलेक्ट्रिक, वो जो होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रिक शमशान गृह होता है ना, जहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन करके जलाते हैं, तो कितनी देर लगती है वहां पे, लगभग आधा घंटा के आसपास। और जब एटॉमिक वार होती है तो क्या होता है, एटॉमिक वार जब उसमें लाखों डिग्री टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, मतलब बॉडी जैसे है ना, बॉडी एकदम हवा से धुआं बन के उड़ जाती है ना, हड्डियां भी नहीं बचती है उसमें ना? लकड़ी में जलाने तो हड्डी बचती है ना, हड्डी मतलब फूल जाती है और उसको फूल कहते हैं, बाद में उठा के लाते हैं, किंतु लाखों डिग्री टेम्परेचर में जलाएं तो क्या होता है, वो भी नहीं बचती, कुछ भी नहीं बचता है ना, राख भी नहीं बचती है, खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही है, एक तो योग जो हम करते हैं, अमृत वेला योग करते हैं, शाम को योग करते हैं, और कुछ उसमें कुछ देर 45 मिनट से एक घंटे में से हम लगभग 5-7 मिनट योग लगता है अच्छे वाला, है ना, और फिर क्या होता है, फिर योग खत्म हो जाता है और हम जैसे कल थे वैसे आज रह जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा होता, कल भी गुस्सा कर रहे थे आज भी गुस्सा करते हैं, कल भी चिंता थी आज भी चिंता है, कल भी कोई बात का डर था आज भी डर लग रहा है, आज भी कल उससे ईर्ष्या थी इस बात की, किसी बात के लिए आज भी उससे ईर्ष्या है, कल भी हमारा मन में कंपैरिजन था आज भी कंपैरिजन की फीलिंग आ रही है, तो विक्रम विनाश तो नहीं हुए, नहीं हुए ना। तो हम कई बार हम सोचते हैं 20-25 साल से मुझे ज्ञान में चल रहा हूं, अभी भी मेरे अंदर तो ये बात अभी भी है ना, अभी मुझे फीलिंग आती है, अभी भी रोना आता है देख करके ना, तो अभी भी खत्म तो नहीं हुआ है। तो ये जो विक्रम हमारे जड़ से खत्म हो जाए, उसके लिए ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसके लिए मैं संस्कार की बात, जो हमारे जो संस्कार बन गए, आदतें बन गई हैं, हैबिट्स बन गई हैं, संस्कार मतलब आदत है ना, उसके लिए हमको समझने की आवश्यकता है। चलिए दो मिनट शांति। तो कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, 50 साल ज्ञान में चल रहे हैं, 55 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी भी हमारे अंदर से वो चीज निकली नहीं, क्योंकि निकालते हैं निकलती चीजें वही जिनको हम गलत समझते हैं, जिन चीजों को हम अच्छा समझ लेते हैं वो जिन चीजों को हम निकालते हैं क्या। अगर आपके घर में सर्वेंट है आपका, और आपका बचपन से छोटेपन से आप उसे अपने घर में देख रहे हैं, आपके लिए चाय बना के देता है, आपके लिए नाश्ता तैयार करके देता है, आपको कपड़े प्रेस करके देता है, समय पर सब कुछ करके देता है, उसको आप बहुत जरूरी समझते हैं, कि तो वही अगर आपका नुकसान कर रहा हो अंदर अंदर चुपचाप, जो भी आप कमा के लाते हैं उसको वो खत्म कर देता हो, तो अंदर अंदर तो कभी आपकी प्रगति होगी क्या, डेवलपमेंट होगी, जमा होगा। और ऐसा ही इंसान के साथ हमारे साथ होता है, 11 साल की उम्र तक जो कुछ भी हम अपने माता पिता में देखते हैं, अपने बड़े भाई बहनों में देखते हैं, अपने टीचर में देखते हैं, अपने से बड़े जिनको हम अच्छा मानते हैं उनमें देखते हैं, उनमें और जिससे हमारा मन, जिसमें हमें लगता है कि रिवार्ड की फीलिंग आती है, उनको हमारा मन पैसिवली स्वीकार कर लेता है, वो पैसिवली हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपके घर में, आप अपने घर में जैसे छोटे हैं, 3-4 साल के हैं, और आप अपने घर में, आपके पिताजी हैं, माताजी बैठी हैं, आपके बड़े भाई बड़ी बहनें जो भी हैं घर में, 4-5-6 मेंबर हैं बैठे हैं, और मम्मी बोले जा रही है किसी काम के लिए, कोई उसको सुन नहीं रहा है, किंतु पिताजी जो गुस्सा करते हैं थोड़े एकदम से वो काम तुरंत हो जाता है, तो बच्चे के मन में क्या रिकॉर्ड हुआ, 4 साल के बच्चे के मन में क्या रिकॉर्ड हो गया, गुस्सा करने से काम तुरंत हो जाता है, एक बार देखा, फिर दूसरी बार ऐसा हुआ, टीचर स्कूल में देखा, गुस्सा करने से काम तुरंत हो गया, फिर घर में देखा, फिर दोस्तों में देखा, बाहर देखा, कई जगह देखा, बार बार क्या रिकॉर्ड हो गया, गुस्सा करने से काम बनता है, और ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, और ये अंदर बहुत गहरा रिकॉर्ड हो गया, ये 11 साल की उम्र तक जितनी बार रिकॉर्ड हुआ वो पक्का आपकी पर्सनैलिटी बन गई, पर्सनलिटी ट्रेट बन गया, ठीक है। आपने देखा आपके घर में आप सब कुछ, पिताजी गुस्सा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मां को डांट रहे हैं, या भाई को डांट, आपकी बहन को डांट रहे हैं, बड़ी बहन को डांट रहे हैं, और बहन ने रोक के दिखा दिया तो क्या हुआ? पिताजी ने डांटना बंद कर दिया, माँ ने डांटना बंद कर दिया और क्या किया, उसको गले से लगा लिया। क्या रिकॉर्ड हो गया? रोकर दिखाने से सहानुभूति मिलती है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, डर के डरने की बात है ना, चिंता की बात है, जल्दीबाजी करने की बात है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें, एंजाइटी की बात है ना, तुरंत जल्दी काम होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, है ना। एंजाइटी पैदा करना, सर मदर आपकी बहुत एंशियस नेचर की थी, या आपके कोई भी घर में ऐसा फीलिंग, इसको बहुत ज्यादा फीलिंग, बात बात पर रोना आना, भावुक हो जाना, तो वो जो आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है उसका सम टोटल आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और वो आप ज्ञान में 40-50 साल चलने के बाद भी वही आप करते रहते, क्योंकि उसको आप बुरा नहीं समझते, क्योंकि उससे आपके बार बार काम बनते हैं, दुनियावी काम, उसमें गेन की फीलिंग आती है, राइट। आज भी हमारे भाई बहन लेक्चर देने से पहले, क्लास कराने से पहले एंजाइटी, आज मेरे को क्लास करानी, आज मेरे को क्लास करानी, आज क्यों टेंशन में हो, दिखाई दे रहे हो, आज मेरे को क्लास करानी, मेरे कैसे में टेंशन क्या बात है, नहीं नहीं मेरे को जब क्लास करानी हो तो मेरे को टेंशन होती है, एंजाइटी रहती है, सोचता आज क्लास ना हो मेरी, तो मतलब वो एंजाइटी की फीलिंग पहले से है, एक्यूरेसी की फीलिंग पहले से है, तो वो फीलिंग हमको ऐसे, ये संस्कार जैसे बना हुआ ना, अभी संस्कार मान लो अंत समय में असंस्कार रहा तो क्या होगा, पास भी जमा होंगे, कितना भी योग तपस्या कर लो पास भी जमा हो सकेंगे, नहीं हो सकते ना। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि इनको हम निकाल, इनको भी निकालना है ज्वालामुखी याद से, राइट। तो मैंने कहा मैं इस पर भी आपको थोड़ा दृष्टि, आपका ध्यान इस पर लेके आऊं। बाबा कई बार इन संस्कार को मूल संस्कार भी कहते हैं, और यही कारण होते हैं, यही मेन कारण होते हैं हमारी हमारी कई बीमारियों के, शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, अस्थमा की बीमारी है, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं, या हमारी कमर का दर्द होता है, माइग्रेन होता है, या हमारी कई ऐसी बीमारियां जो एसिडिटी की बीमारी, जीआरडी की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियां, लगभग मैं समझता हूँ काफी सारी 70-80% बीमारियां इन्हीं मूल कारण संस्कारों कारण से होती है, जिनको हम पहचानते नहीं है वो हमारे साथ बने रहते हैं, बीमारी भी हमारे साथ बनी रहती है हमेशा के लिए। जब उनको पहचान लेते हैं तो बीमारी भी चली जाती है, संस्कार भी चला जाता है, और हम ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ज्ञान, इसकी ज्ञान की गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि कहां से क्या चीज पैदा, जड़ क्या है, उस संस्कारों की जड़ क्या है, और कैसे हम लोग चाह करके भी, ज्ञान योग की समझते हुए भी, रोज मुरली सुनते हुए भी, अमृत वेला करते हुए भी, सात्विक भोजन करते हुए भी, हमारे संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन होते, हमारा योग क्यों नहीं पावरफुल होता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी माने एक संकल्प, एक लगन, एक टिक, एकाग्र, एक रस, कुछ भी हो एक ही की याद आए बस, यूं किया और एक सेकंड में ऊपर पहुंच गए परम धाम में, बाबा की गोद में पहुंच गए, कुछ भी याद ना आए, हार्ट में दर्द हो रहा है, बाबा के अलावा कुछ याद ना आए, बाबा एकदम याद आए, कुछ भी हो जाए बाबा याद आए, ऐसी स्थिति। आखिरी पेपर कितने समय का है, एक घंटे का, एक मिनट, एक सेकंड कितना होता है, कितना, इतना ही है ना, एक सेकंड हो गया। अभी आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, ठीक है, सामने हार्ट में दर्द हो रहा है, मतलब हार्ट का, मैं हार्ट की बात ज्यादा कर देता हूं वैसे, हार्ट में अचानक दर्द हो गया आपका ना, घबराहट हो रही है बहुत जोर से, तो उस समय कौन नहीं, क्या है, क्या याद आएगा, सॉर्बिट्रेट याद आए कि शिव बाबा याद आए, कौन याद आए, सॉर्बिट्रेट ज्यादा जल्दी जल्दी असर करेगी, शिव बाबा जल्दी असर करेगा, कौन जल्दी असर करेगा बताओ, शायद आपको पता नहीं हो, मेरे को भी हार्ट की बीमारी है, पता है आपको, नहीं पता, मेरे को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, मेरी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी थी पहले, बहुत मोटी, मैंने इतनी मोटी कि जैसे होता ना पुराने जमाने किले की दीवारें होती थी, आज के 9 इंच की दीवार होती ना हमारे मकान की, पहले 2-2 फुट मोटी दीवारें होती थी ना, तो मेरी दीवारें भी बहुत मोटी मोटी दीवारें हो गई थी ना, तो मेरी दीवार, इसका कोई इलाज नहीं इस बीमारी का ना, 10,000 में से एक आदमी को बीमारी होती है वाली, जेनेटिक डिजीज है, तो मेरी दीवार इतनी मोटी हो गई थी। और उसमें क्या होता है, 70 बार धड़कता ना हार्ट, तो 70 बार दर्द होता है। एंजाइना में तो होता है ना कभी चलने फिरने से दर्द होता है, और इसमें कैसा दर्द होता है, 70 बार धड़केगा तो कितनी बार दर्द होगा, मतलब हर धड़कन दर्द वाली होती है और बीट्स इरेगुलर होती हैं बहुत, है ना, और लगता कभी भी जा सकते हैं शरीर छोड़ के, ऐसा होता है, कभी भी डेथ हो जाती है, सडन कार्डिक डेथ हो जाती है, तो इस तरह से दर्द होता है बहुत जोर से ना। ये मेरे अनुभव की बात, मैं कुछ भी मैं जो आपसे शेयर करता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं शेयर करता जो मतलब ऐसे बनी बनाई की बात हो या किसी किताब से पढ़ी हो, या मूल्यों के आधार पे अपने ऊपर प्रयोग की बातें, अनुभव की बात है। तो मेरे को, मैं सॉर्बिटेट ले नहीं सकता, अगर सॉर्बिटेट लूं तो मेरा हार्ट बंद हो जाए, एंजाइना जो होता है ना उसमें तो सॉर्बिटेट असर करती है, मेरे को क्या करती है, सॉर्बिटेट रिएक्शन करती है ना, मतलब एकदम हार्ट में गलती से मुझे दे देना वैसे भी तो एकदम हार्ट बंद हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि जब उसका कोई इलाज और दूसरा इलाज नहीं है, तो जब वो दर्द होता है ना, जब वो एसिड होता है, तो होता था जब 96-97 की बात है, तो मैं मेरे को सारी रात नींद नहीं आती थी उस समय, क्योंकि लेटता था बहुत दर्द बढ़ जाता था, और सांस फूलने लगता था, और घबराहट होने लगती, धड़कन इरेगुलर हो जाती थी, उठ के बैठता था, फिर बाबा को याद करता था तो ठीक हो जाता था, फिर जैसे लेटने की कोशिश करता फिर दर्द शुरू हो जाता था। होता ना रात का समय 11 बज गए 12 बज गए तो लेटना तो चाहेगा ना आदमी, तो फिर उठ के बैठना पड़ता था, मुझे मजबूरी में योग सीखना पड़ा। कोई तो होता ना प्यार से योग सीखता है ना, योग तो मैं पहले से करता था, किंतु वो था कि मैं बता रहा हूं कि एक ज्वालामुखी याद और वो याद कैसी होती है ना। अमृत वेला मैंने कभी मिस नहीं किया, 1986 से मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, मुरली कभी मिस नहीं की, किंतु 97 में जब मुझे तकलीफ ज्यादा बढ़ी, तो मैंने फिर इंटेंसली समझ के योग का प्रयोग करना शुरू किया जीने के लिए। किसके लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आप कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी, एनी टाइम यू कैन डाई, और मुझे लगता भी था कि मेरी धड़कन अभी आई अभी नहीं आ रही, शायद अभी खत्म, एक और नहीं आई तो खत्म है ना, ऐसा होता था। तो वो जो हम याद करते हैं ठंडी हल्की फुल्की याद, अभी याद कैसी होती है, योग करना शुरू किया, मैं आत्मा हूं परमात्मा के संतान हूं, अनुभव करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, फिर कोई बात याद आ जाती है कल वाली, फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर शुरू करते हैं एबीस आत्मा बाबा कनेक्शन, फिर ध्यान थोड़ा लगता है, मां का संबंध अनुभव कर रहे होते हैं, बीच में फिर थोड़ी नींद आ जाती है ना, आगे झुक जाते थे, फिर अलर्ट होते हैं, फिर थोड़ा शुरू करते हैं वापस, फिर दाई तरफ नींद आ जाती है ना, फिर थोड़ी तरफ बाई तरफ, फिर थोड़ी तरफ, फिर तो बाद में देखे ना हम लोग सामने बैठ के योग कराओ तो दिखाई देता है, लोग अमृत वेला कैसे कहते हैं ना, नहीं, और हमें काफी बार आगे बैठ के योग करने का मौका मिलता है ना, तो हम देखते कई बार कैसे योग होता है ना। तो 45 मिनट जब होने को लगते हैं ना, 40-45 मिनट, तो हम एकदम ऐसे जाते सूक्ष्म वतन पे पहुंचते हैं, बाबा को देखते तुरंत लगता है अभी अभी योग गीत बजना शुरू हो जाता है, फिर तो टाइम पूरा होगा, चलो नीचे आ जाते, तो 1 सेकंड ऊपर पहुंचते हैं और नीचे आ जाते, तो 1 सेकंड पे कभी हमारा विक्र विनाश हो सकते हैं क्या? अगर आपने दूध रखा स्टोव पर और रखा या गैस पर और तुरंत रख के उतार लें तो क्या होगा, दूध गर्म हुआ, कीटाणु नष्ट हो गए, पीने लायक हो गया, नहीं हुआ ना, तो ऐसा हमारा अधिकतर योग होता है। कम से कम 45 मिनट जब अमृत वेला समय जब योग करते हैं, तो कम से कम हमारा 10 से 15 मिनट तो परमधाम में बीते, और 10 से 15 मिनट परमधाम में बीतने के लिए 30 मिनट तो हम सूक्ष्म मतलब में रहना चाहिए ना कम से कम। तो 45 मिनट कैसा हमारा, और ये ज्वालामुखी योग के अभ्यास, ये सुबह ही अमृत वेला ज्यादा पॉसिबल है, सारा दिन पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, पीछे तो जुकाम सुबह से हो रहा है, इसलिए मैंने कल फोन किया था, शायद मैं नहीं आऊं, फिर भी सॉरी है, बीच में पानी पी रहा हूं। ये भी कोई विक्रम होगा ना। ओम शांति। तो मैं बात कर रहा था आपसे, अब हम थोड़ा सा ज्ञान की गहराई में चले जाते हैं, चलिए ज्ञान का, ताकि हम समझ पाएं कि हमारा कैसे, हम इसको कैसे हम एक्यूरेट बना सकते हैं, और वो बात को हम सेकंड में कर सकते हैं जो घंटों में नहीं होती है। जैसे मैंने बताया एटॉमिक बम जैसे सेकंड में जला सकता है ना, लाखों डिग्री टेम्परेचर रिलीज करता है, ऐसा ही हमारी याद हो तो हमारा जो विकर्म, जो जन्म जन्म के विकर्म है, कितने विकर्म है अनगिनत, बहुत बड़ा बोझा सिर पर है। और सब स्पेशली जो बाबा का बनने के बाद जो हम विकर्म करते हैं उसका क्या होता है, वो तो 100 गुना हो गए, मतलब 21 जन्म से लेकर 83 जन्म तक जो विकर्म किए वो एक तरफ है, और जो बाबा का बनने के बाद विकर्म किए वो उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बाबा का बनने के बाद भी विक्रम हमारे अभी भी हो रहे हैं। मैं 8 घंटे का योग का फिर बात बताऊं उसका महत्व क्या है। 8 घंटे बाबा कहता योग का चार्ट रखो, क्यों जरूरी है 8 घंटे योग का चार्ट रखना, क्योंकि वो नहीं होगा तो हम विक्रम कर रहे हैं रोज, और रोज इतने कर रहे हैं, इतने 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 भस्म भी कर रहे, इतने कर भी रहे हैं, तो खड़े वहीं पर ही हैं हम लोग, है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि 8 घंटे का चार्ट हमारा योग का हो। तो अब जो है जैसे हम थोड़ा मन बुद्धि को थोड़ा गहराई में समझ लेते हैं, पहले से आत्मा की 3 शक्तियां मन बुद्धि संस्कार। आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, परमात्मा को आज की मुरली में भी था ना, हम आत्मा को देख सकते हैं ना हम परमात्मा को देख सकते हैं, सिर्फ बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, कोई भी मशीन के द्वारा देख सकते हैं आत्मा को नहीं देख सकते। वो एनर्जी है, राइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, और उससे वो 7 एनर्जी निकल रही है, और उसके कारण शरीर चल रहा है। हमारी बॉडी में लगभग 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, 80,000 बिलियन, बिलियन कितने होता बिलियन, और वो हर कोशिका इसके कारण जिंदा है, वो ज्ञान की एनर्जी जा रही है तो वो जिंदा है, वो ज्ञान नहीं जाए, वो मैसेज नहीं जाए हर सेल के ऊपर तो एकदम सेल्स काम करना छोड़ देंगे, हार्ट चलना बंद कर देगा, सांस आना बंद हो जाएगा, पेट में खाना पचना बंद हो जाएगा। वो जो है एक्यूरेट आत्मा से जो इस साथ ज्ञान की एनर्जी जा रही है, ज्ञान की एनर्जी सार रूप में क्या है, ABCD ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म परम ज्योति परमपिता परमात्मा शिव जो परम धाम में रहते हैं उनकी संतान हूं, सी फॉर कनेक्शन, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, मुख्य 9 संबंध, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन और बच्चा, 9 मुख्य संबंध, ऐसे तो बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, किंतु मुख्य 9 संबंध की अनुभूति का सबको अनुभव होना चाहिए बहुत गहराई से। फिर डी फॉर ड्रामा, ये संसार रूपी नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमपिता परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अगर मैंने किसी दुख दिया हुआ है तो बाबा उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, वो मुझे दुख देगा, किंतु अगर मैं बाबा को सच्चे दिल से याद करता हूं, बाबा मुझे क्या देगा, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति दे देगा, ताकि वो सूली जैसा दुख भी मेरे लिए क्या बन जाए, कांटा बन जाए, और कांटा भी फूल बन जाए। जैसे मेरे को हार्ट की तकलीफ हुई 96 में, तो मेरी हार्ट की दीवार इतनी मोटी हो गई, और जब मैंने इसका अभ्यास किया बहुत गहराई से राजयोग का, योग का प्रयोग किया अपने ऊपर, तो मेरी हार्ट की दीवार वापस नॉर्मल हो गई, है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई जो इम्पॉसिबल दुनिया के लिए इम्पॉसिबल था, है ना? और उसमें अचानक मृत्यु से सूली कांटा बन गई, और कांटा भी क्या बन गया, क्योंकि उस अनुभव, वो अनुभव जो मेरा अनुभव था, उन 4-5 महीने का अनुभव जो मैं योग कर रहा, इंटेंस अनुभव रहा, उसके द्वारा जब हार्ट का प्रोग्राम, कैड प्रोग्राम जब पास हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, सितंबर 97 मेरा हार्ट की बीमारी ठीक हुई, प्रूव हुआ कि मेरी हार्ट की दीवारें ठीक हो गई हैं। अक्टूबर 97 में हार्ट का प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो गया और तब हमने इसको शुरू कर पाए। वो अनुभव है मेरे काम आया, अथॉरिटी आई, अनुभव की अथॉरिटी आई, लोगों को मैं अथॉरिटी से कह सका कि राजयोग से ब्लॉकेज खुल जाएंगे, खुलते हैं, राइट। जबकि कोई प्रूफ नहीं था मेरे हाथ में कि खुलते हैं, कि तो मेरा अपना अनुभव मेरे लिए क्या था, अथॉरिटी था, राइट। तो वो जो है कांटे से सूली से कांटा और कांटा भी फूल बन जाता है, ठीक बात है। तो डी फॉर ड्रामा। तो अभी तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, अगर एबीसी है तो डी है, अगर एबीसी नहीं है तो डी है क्या? आज सारी दुनिया कहां फंसी हुई है, इसी मैट्रिक्स में फंसी हुई है। मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, मुझे लोगों ने बहुत दुख दिया है, मैंने सबके लिए इतना किया किंतु लोग सब मुझे धोखा देते हैं, सब मुझे दुख देते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। 90% थॉट्स हमारे कहां से आ रहे हैं, पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से आ रहे हैं या फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं। सिर्फ 10% थॉट्स ही हमारे प्रेजेंट के हैं। तो ये जो है जो हुआ अच्छा हुआ, ये सिर्फ वही कह सकता जो अपने को आत्मा समझता है, दूसरे को आत्मा देखता है और परमात्मा से हर संबंध की अनुभूति करता है, वो इसको ड्रामा के राज को समझता है, वही कह सकता है फिर जो हो रहा है अच्छा, क्योंकि बाबा मेरे साथ है और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला। तो ये जब हम ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी, क्योंकि बेसिक जो ज्वालामुखी याद में बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है आपको, ज्वालामुखी याद में ना एक संकल्प, और हमारे संकल्प कितने चल रहे हैं, पास्ट के संकल्प चल रहे हैं, फ्यूचर के संकल्प चल रहे हैं। जो संकल्प, सिर्फ 2-3 संकल्प हमारे होने चाहिए एक मिनट में, कितने संकल्प चल रहे हैं, 3 को 10 से गुना कर दो, 9 से गुना करो, 27 संकल्प चल रहे हैं। शिव बाबा कितने संकल्प हैं, शिव बाबा कितने संकल्प चलता है, कोई संकल्प नहीं चलता उसको, शिव बाबा का संकल्प कितने हैं, 0 संकल्प है उसको, उसको कोई संकल्प नहीं चलता है। आज की मुरली में बैठा मैं, ड्रामा में भी, मैं भी ड्रामा में बना हूं, मेरी लिमिट है। भारत में किसी समस्या आपदाएं आती है, किसी समस्याएं आती हैं, कत्लेआम होता है, तो बाबा नीचे आ जाता है क्या, शिव बाबा नीचे आता है क्या? नादिर शाह आया, उसने पूरी दिल्ली खत्म कर दी, है ना, तो बाबा नीचे आया क्या? 1947 में बाबा तो खैर उस समय तो आ गया था, तो मतलब तो बाबा ने उसमें कुछ इंटरफेयर किया क्या, इंटरफेयर नहीं किया ना। तो बाबा भी मतलब, बाबा भी अपनी लिमिट रखता है ना, ड्रामा के अनुसार जो एक्यूरेट पार्ट है वही निभाता है ना, नहीं। तो जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। ये जब समझ लेने से, इससे हमारा मन और बुद्धि पवित्र होती है, पवित्र होती है। इससे हमारे मन बुद्धि, पवित्रता का मतलब है कि हमारे विचार जो बहुत जरूरी है वही आए, जो जरूरी नहीं है वो ना आए, राइट। तो हमारी बुद्धि, मन बुद्धि पवित्रता का मतलब, मैं जब अपने को आत्मा समझ के आपको आत्मा देख रहा हूं, दूसरे को आत्मा देख रहा हूं और बाबा की याद में हूं, बाबा से किस संबंध की अनुभूति कर रहा हूं, किसी देहधारी संबंध की अनुभूति नहीं कर रहा हूं, और जो भी हुआ संकल्प चल रहा है उसको मैं कह रहा हूं जो हुआ अच्छा हुआ, उसको मैं माफ कर दे रहा हूं, जो हो रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्योंकि ज्यादातर हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, जो पास्ट में हुआ उसके कारण हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक बात है, करते हैं एक्सेप्ट, ये इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, इसको मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, मैं नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अब तो इसको बदलना चाहिए, किंतु एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं वो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना, वो नहीं कर पाते। तो प्रेजेंट में एक्सेप्ट तब होगा और फ्यूचर में, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, तभी फ्यूचर में इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, राइट। तो पवित्रता आती है, पवित्रता से हमारे अंदर शांति, शांति माना विचार कम हो जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेसेसरी विचार रह जाते हैं, पॉजिटिव विचार बहुत कम होते हैं, और तब हमारे अंदर क्या पैदा होती है, अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर सबके लिए पैदा होती है। कोई कैसा भी है, उसने मुझे धोखा दिया, दुख दिया, कुछ भी किया, तो भी मुझे उसके उसके लिए अनकंडीशन, मेरा भाई है, मेरी बहन है, अनकंडीशन डिग्निफाइड केयर, आदर के साथ उसकी केयर करते हैं, नहीं? वो लव है। और इस लव से सुपर सेंसुअस फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है, जॉय आती है, और उससे आनंद की फीलिंग, उसकी एक्सट्रीम को एक्सटेसी कहते हैं, आनंद कहते हैं। और वो एक्सटेसी क्या करती है? हीलिंग करती है, बिकॉज ब्लिस हील्स, जो हमारे साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स उसको हील कर देती है, जो दाग घाव हो गए ना, जख्म बन गए हमारे इमोशनल, जो हमारे बहुत गहरे जख्म बन गए इमोशनल, वो हील हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो वाली इमोशंस, जो इंटेंसिटी ऑफ थॉट थी खत्म हो जाते हैं, उसके बारे में बार बार विचार चल के नहीं आते फिर हमारे पास, जो हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया था उसको खत्म कर देते हैं, और उससे फिर शक्तियां पैदा होती हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सामने लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन, सामना, समाना, सहयोग, ये आठ शक्तियां पैदा होती हैं। अब जो है दिल जो है ना हमारा, जो कॉन्शियसनेस है, जो बुद्धि है, बुद्धि के चार एस्पेक्ट है। पहला जो एस्पेक्ट है बुद्धि का वो कौन सा है? दिल है, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, जो कहते हैं दिल, जैसे दिल के बारे में जो कहते हैं ना, दिल में बाबा ने जो इस बार जो मुरली चली, दिलाराम बच्चों के दिल में समाया है और बच्चे दिलाराम के दिल में समाए, कौन सा वाला दिल? ये दिल थोड़ी ना होता है, इस दिल में बाबा समाया है, जो आत्मा, जिसमें इस आत्मा में सातों गुण सबसे ज्यादा इंटेंस है, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे कॉन्शियस कहते हैं, उसे अंतरात्मा कहते हैं, उसे हिंदी में दिल कहते हैं। और उस जब सातों गुण की इंटेंसिटी है तो उस इंटेंसिटी के अंदर बाबा दिलाराम है, राइट? उस इंटेंसिटी के अंदर दिलाराम है, और उस इन सातों गुणों की इंटेंसिटी से ही हमारा विवेक बनता है, जिसे प्रज्ञिक शक्ति कहते हैं। प्रज्ञिक शक्ति को ही विवेक कहते हैं, विजडम, कि ठीक क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ओके? और उससे जब विवेक हमारा ठीक है तो उससे हमारी निर्णय शक्ति बनती है, इसको हम बुद्धि प्रॉपर भी कह सकते हैं। अगर मेरी बुद्धि ठीक निर्णय लेती है तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बुद्धि का चौथा एस्पेक्ट है, वो है चित्त, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो क्या चार बुद्धि के चार एस्पेक्ट क्या हो गए? पहला दिल, कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस, दूसरा विवेक, तीसरा बुद्धि, चौथा चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद है हमारा मन। ये एक तरह से ना, जैसे होते ना एनर्जी के भी जैसे वेव्स होते हैं ना, इसे जैसे आपने देखा जब अपने ओम शांति में देखेंगे ना आप, शिव बाबा का चित्र बना हुआ ना, जो ऊपर ऊपर ऐसे वलय के रूप में दिखा, एक बार दिखाते ना जो हमारे चित्र, जो हमारी किताबों में चित्र है, वो भी ऐसे शिव बाबा बीच में आसपास गोल गोल चक्र दिखा देते हैं ना, तो ऐसे ही पता, वो कोई फिजिकल रूप में नहीं है, बट उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि उसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते, किंतु इसको मैं इस तरह से हम समझाते हैं। और फिर मन के चार एस्पेक्ट कौन से? पहला स्मृति है, मेमोरीज, फिर एटीट्यूड्स हैं, फिर इमोशंस हैं, फिर थॉट्स। और ये दोनों चीजें मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, और इसके बाहर हमारा स्थूल शरीर, ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर। अब मैं आपको बताता हूं, जब हम सतयुग में थे तो हमारे सातों गुण भरपूर थी, आत्मा सतो प्रधान थी, और सतो प्रधान स्थिति को ही पावन स्थिति कहते हैं। जब सातवा सातों गुणों से भरपूर है तो उसे कहते पावन, और जब सातों गुण खत्म हो जाते हैं, तमो प्रधान, सातों गुण अज्ञान आ गया, ज्ञान की बजाय ज्ञान, पवित्रता की बजाय पवित्रता, शांति की बजाय शांति, जब सातों गुण लगभग ना के बराबर रह जाते हैं तो उस स्थिति को पतित स्थिति कहते हैं। जो तम कहते हैं ना पावन और पतित, सातों गुण की ना होने की स्थिति को पतित कहते हैं और सातों गुण भरपूर होने की स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं। तो जब आत्मा सतयुग में हम हैं तो सतो प्रधान स्थिति है, मतलब पावन स्थिति है, हमारी दिल सातों गुणों से भरपूर है, विवेक हमारा कैसा है, कैसा है विवेक हमारा, कैसा है? एकदम ईश्वर जैसा है, परफेक्ट। इसलिए क्या कहते हैं सत्युग में देवी देवताओं, क्या कहते हैं? भगवान भगवती कहते हैं। प्रकृति कैसे? ईश्वर जैसी, गलती नहीं होती है। कोई भी संकल्प गलत कभी निर्णय नहीं हो सकता है, परखने में गलती नहीं हो सकती है। तो प्रकृति एकदम ईश्वर जैसी है। और बुद्धि कैसी है? दिव्य है, डिवाइन है। जो चीज एकदम एकदम देखी, दिल में, दिल ने उसे एक्सेप्ट किया, विवेक ने एकदम परखा, बुद्धि ने निर्णय दिया और सीधी सीधी चीज मेमोरी में चली गई। सब कॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं जाता है। राधा हमें कह सकते देवताओं में सब कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं। ये सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं तो जो दिल में है वो चित्त में है। दिल में क्या है? आनंद है। चित्त में क्या है? आनंद है। इसलिए कहते हैं दिल में सत्य है तो चित्त में आनंद है। इसलिए देवताओं की स्थिति क्या कहलाती है? सच्चित आनंद स्वरूप। दिल में सत्य है तो चित्त कैसा है? दिल में शांति है, एकाग्रता है और आनंद है, चैन है। दिल चित्त में चैन है, सुख चैन है, राइट। और मेमोरीज में क्या है? मेमोरी में दिल में है जो मेमोरीज में है वही मेमोरीज में। आत्मा मैं आत्मा हूं, परमात्मा सत्य में हमारे साथ नहीं है, किंतु परमात्मा हमारे साथ क्या है? हमारे संस्कारों में हमारे साथ है। परमात्मा किस रूप में हमारे साथ है? संस्कारों के रूप में साथ है हमारे, स्थूल में हमारे साथ नहीं है। और फिर हमारा संबंध बाबा के साथ, संबंध हमारा इतना वो है, वो भी संस्कारों के रूप में है। इसलिए किसी संबंध में हमारा लाग नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है। नारायण जी बैठे हैं, उनको लक्ष्मी की याद नहीं आ रही, बैठे हुए याद आ रही है क्या? याद आ रही है क्या? याद नहीं आती है। जो जहां है संपूर्ण है, हर स्त्री संपूर्ण है और हर पुरुष संपूर्ण है। यहां पर कैसे है? स्त्री सी है और पुरुष भी क्या है? सी है। दोनों को बनना क्या है? क्या बनना है? जीरो। कैसे बनने की कोशिश करते हैं? अब दोनों बनके जीरो बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, बन सकते हैं जीरो। इसलिए वो इसको खींचता है, वो इसको खींचता है, वो इसको खींचता है, वो इसको खींचता है कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, जीरो बनेगा क्या? नहीं बन सकते ना। और राजयोग से क्या होता है? हम सी क्या बन जाते हैं? सबके सब जीरो बन जाते हैं, राइट। तो वहां पर लक्ष्मी भी जीरो है और नारायण भी जीरो है। इसलिए मोह नहीं है, राइट, राग द्वेष नहीं है, समझ रहे हैं बात? मैं इसलिए आपके सामने पहला चित्र रख रहा हूं ताकि फिर इसको हमें ये बनना है। आज की मुरली बता, जब एम ऑब्जेक्ट सामने हो तो आप सहज बन सकते हो, है ना। और इसकी विधि भी इतनी सहज है, फिर हम ज्वालामुखी योग कर सकते हैं। तो फिर हमारा एटीट्यूड सबके प्रति क्या है? वृत्ति कैसे सबके प्रति? आत्मिक है। भावना कैसी है? भावना कैसी है? 100% शुभ भावना, शुभकामना। संकल्प कैसे है? 100% श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली, कल्याणकारी है। और हमारी बॉडी कैसी है? स्थूल तन कैसा है हमारा? एकदम कैसा है? कंचन काया है। कंचन माना, कंचन काया माना एकदम सातों गुणों से भरपूर है। अभी हमारी धरती, हमारी धरती पर 20% ऑक्सीजन है, तो हमारी, हम तो भी हमारे हाथ पर हाथ लाल लाल है, चेहरा लाल है, और वहां पर 50% ऑक्सीजन होती है। कितनी ऑक्सीजन होती है वातावरण में? 50% ऑक्सीजन होती है। समझो क्या हाथ क्या होता होगा? जितने बैक्टीरिया, वायरस, कॉकरोच, सांप, छिपकली, मच्छर, मक्खी कहां रहते हैं? जहां पे ऑक्सीजन कम होती है, 18%, 17%, 15% होती है। नहीं देखा है कहां रहते हैं वो लोग? कॉकरोच कहां रहता है? कहां रहता है? सांप कहां रहते हैं? जहां पर ऑक्सीजन ना के बराबर होती है। और 50% ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा? ये सांप होंगे क्या? कॉकरोच होंगे? मक्खी होगी? मच्छर होगा क्या? मेरे बैक्टीरिया वायरस होंगे क्या? होते ही नहीं है, सारे शरीर में बैक्टीरिया वहां बदबू होती ही नहीं, हर हर चीज में सुगंध होती है, शरीर में भी सुगंध होती है, आदमी को सुगंध हो भी सुगंध होती है ना। जैसे देखो कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं, अपने बच्चों को सूंघते हैं, आदमी कहां सूंघते हैं अपने बच्चों को, क्या नहीं सूंघते हैं। तो वहां पर सुगंध, पाउडर की सुगंध नहीं, क्रीम की सुगंध नहीं, नेचुरल सुगंध होती है। तो ये वहां सत्यु का रूप है। फिर जब 21 जन्म लेते रहते हम, 20 जन्म लेने के बाद हमारी क्या होता है, तो आप जब द्वापर युग शुरू होता है तो हमारी आत्मा की एनर्जी कम होती जाती है, सातों एनर्जी लॉ ऑफ एंट्रोपी कम होती जाती है। तो तभी देवी देवता थे, अब क्या होता है एनर्जी मन की ज्यादा होती जाती है, मन मंत्री है, हम मन के पास 51% एनर्जी आ जाती है और आत्मा के अंदर एनर्जी कितनी आ गई 49%। जब आत्मा स्ट्रांग थी सत्युग में, जब सातों गुणों से भरपूर थी, तो वो आत्मा मन बुद्धि संस्कार को भी नरिश करती थी और बॉडी के डिफरेंट अंगों को भी नरिश करती थी, संपूर्ण नरिश करती थी। फिर जब एनर्जी कम हो गई आत्मा के पास, सातवें बैटरी जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है, तो फिर अब मन शक्तिशाली हो गया। अब मन का कनेक्शन किससे था, पांचों कर्म इंद्रियों से था, आंख नाक मुख और त्वचा से था। तो बाहर की दुनिया देखी, दूसरे मनुष्यों को देखा। जब तक हम सत्युग में थे तो हमें शक्ल नहीं देखते थे लोगों की, उनकी बॉडी नहीं देखते थे, उनको गुणों में व्यवहार करते थे, गुण ही दिखाई देते थे, चेहरे पे नजर, किसी के शरीर पर नजर जाती ही नहीं थी हमारी। हमारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली था कि आभा मंडल ही नजर आता था। किंतु जैसे ही एनर्जी जब स्किन के लेवल पे आई तो हमें लोगों को शरीर दिखाई देने लगे। मतलब जब मन की एनर्जी बढ़ गई, आत्मा की एनर्जी कम हो गई, तो मन राजा बन गया और तब से मनुष्य क्या कहलाने लगा, मनुष्य कहलाने लगा। मनुष्य का मतलब मन के वश में, मनुष्य है ना। सत्युग में भी देवता, देवी देवता मनुष्य जैसे तो थे किंतु देवी देवता कहलाते थे, किंतु अब क्या कहलाने लगे, मनुष्य कहलाने लगे। ठीक है। अब जब आंखों से देखा शरीर को, अपने आप अपने शरीर भी सुंदर था, दूसरों का भी शरीर सुंदर, तब तक सुंदर ही था, तो तब उन पर दृष्टि गई, तो तब काम विकार आया, तब क्रोध लोभ, फिर उनके लिए क्रोध आया, फिर लोभ आया, फिर मोह आया, फिर अहंकार आया, फिर उनके और बाल बच्चे। तो जैसे जैसे आत्मा की एनर्जी और कमजोर होती गई तो क्या हुआ, अब दिल के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर क्या आ गया, देह आ गई। देह को देखा ना, तो बॉडी, अभी आत्मा की एनर्जी कम हो गई और देह कहां चली गई, हमारे दिल में चली गई। किसकी, सबसे पहले अपनी, फिर दूसरों की, देह के संबंधों की, देह के स्वभाव, देह का स्वभाव क्या था, काम विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह का संस्कार क्या था, आलस आदत। देह के संस्कार क्या है, आलस करना, अलबेलापन, चिंता भय शक अनुमान, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, कंपटीशन कंपैरिजन, दूसरों में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना। तो सबकी सब स्वभाव संस्कार कहां चला गया, हमारी कॉन्शियसनेस में उतर गया, और देह के पदार्थ जो भी हमने इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी अब दिखाई देती थी ना ये चीजें, वो भी अंदर कॉन्शियसनेस में चली गई। अब हमारा विवेक क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, इसको मानू कि इसको मानू, ये मेरा है, अगर इसको ऐसे किया तो ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगी, है ना। विवेक कंफ्यूज और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब आत्मा, अब बुद्धि डिसीजन ले सकती है। अभी मान लीजिए आपका बच्चा गलत कर रहा है, आप उसको डांट सकते हैं, डांटना चाहिए कि तू डांट सकते हैं, साथ में पत्नी बैठी है, तो डांट पाएंगे उसको आप, डांटना चाहिए, नहीं डांट पाएंगे, तो वो फाइल कहां जाएगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी। जो आप सेव नहीं कर सकते वो सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, चित्त में चलेगी। तो इस तरह से हमारा, बल्कि आपके धीरे धीरे क्या होता है, ज्यादा डिसीजन कहां जाने लगते हैं, आप डिसीजन ले नहीं पाते, तो कहां जाते हैं वो डिसीजन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होने लगता है। चित्त जो है अब अशांत होने लगता है, चंचल होने लगता है और उदास होने लगता है। पहले क्या था, आनंद, शांति, एकाग्र और आनंद था। और उसके साथ स्मृतियों में क्या रिकॉर्ड होता है, स्मृति में भी जो देह देके संबंध देके स्वभाव संस्कार देके पदार्थों की बात रिकॉर्ड होती है, वृत्ति आपकी वैसी बन जाती है। भावना कैसी, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव वाली भावना बन जाती है। जो व्यक्ति मेरा है, मेरे लिए अच्छा करता है, उसके प्रति लगाव हो जाता है, और जो मुझे अच्छा लगता है कि तो मेरा नहीं है, उसके प्रति झुकाव हो जाता है। और जिससे जो मेरा नहीं है ना मेरे संपर्क में, किंतु उससे मुझे कुछ मिलता है, उसके प्रभाव में रहते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके प्रभाव में रहते हैं, और जो मेरे अगेंस्ट हैं उनके प्रति टकराव होता है। तो ये मेरी वृत्ति बन जाती है। भावना कैसी होती है, इसके अनुसार जिनके साथ लगाव है, झुकाव है, उनके लिए अच्छी भावना, आउट ऑफ प्रपोर्शन है ना, और जिनसे टकराव है उनके प्रति आउट ऑफ प्रपोर्शन खराब भावना, नहीं ऐसा, और जिनके प्रति प्रभाव है, जिनके प्रभाव में हो उनकी जी हजूरी हर समय, वो ठीक है गलत है उनकी हमेशा जी हजूरी करते, नहीं करते। बॉस इज ऑलवेज राइट कहते हैं ना सर, और संकल्प कैसे चलते हैं इसी अनुसार। मनुष्य के सारे संकल्प गलत चलते हैं क्या, नहीं। लगाव झुकाव वालों के लिए बहुत अच्छे संकल्प चलते हैं, प्रभाव वालों के लिए ठीक ठीक चलते हैं, और टकराव वालों के साथ एकदम खराब चलते हैं। नहीं, पर संकल्प कोई भी अच्छा नहीं है, सारे खराब है। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाले सारे खराब है, सारे विकर्म है, और उसके अनुसार कर्म होते हैं। ठीक है, तो अभी सूक्ष्म शरीर कैसा हो गया हमारा, बुद्धि भी खराब हो गई और मन भी खराब हो गया। अब सूक्ष्म शरीर कैसा हो गया, अब ये एनर्जी को ब्लॉक करता है जो शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। जो ज्ञान, पवित्रता, शांति आत्मा में कम हो गई थी, अब बॉडी में कहां पहुंच रही है, बहुत मुश्किल से पहुंच रही है। हार्ट को प्यार नहीं पहुंचता, फेफड़ों को शांति नहीं पहुंचती, पेट को खुशी नहीं पहुंचती, सब अंग बीमार। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग बाबा के बच्चे बनते हैं। तो अब बाबा क्या करता है, अब बाबा करता है, बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबा कहता है, अगर हम बाबा की बात शुरू समझे तो योग समझना बहुत सहज है और ज्वालामुखी याद बनना बहुत सहज है। तो बाबा पहले ही बात करता है कि बाबा पांच स्टेटमेंट हमको बताता है, और पहला स्टेटमेंट खत्म हो तो दूसरा स्टेटमेंट शुरू होता है। अगर पहला स्टेटमेंट ही खत्म नहीं करते, दूसरा स्टेटमेंट शुरू भी नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट बाबा का है, बच्चे देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, चारों को बुद्धि से छोड़ो, बुद्धि से भूलो। जैसे हम कहते हैं त्याग, तपस्या, सेवा, जो हमारी जो भाषा में जो क्लासेस कराते हैं, जो हमारे भाई बहन क्लासेस कराते हैं, या बाबा भी हमें मुरली में बताते हैं, त्याग तपस्या। त्याग है तो तपस्या है, त्याग नहीं है तो तपस्या है क्या? अगर हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो त्याग नहीं है, और त्याग नहीं है तो तपस्या नहीं है, तपस्या नहीं तो सेवा नहीं है। हम भले जाके लोगों को हजारों भाषण करें, बड़े बड़े प्रोग्राम करें, कॉन्फ्रेंस में जाके भाषण करें, उससे सेवा होती है क्या? सेवा नहीं होती। भले लोगों को मैसेज मिलता है ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी संस्था है, किंतु वो सेवा हो जाए, परिवर्तन हो जाए, बाबा के बच्चे बन जाए, ऐसा नहीं होता है। राइट, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर तो ये जो हमने जो बाबा का जो पहला स्टेटमेंट, इसी बात पर कि बेहद की वैराग्यवृत्ति धारण करो और त्याग करो। किस बात का त्याग करो? ये चार बातों का। देह, अपने को देह नहीं समझो, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, चलते फिरते उठते बैठते ये लगन लगी रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब योग करने बैठते तो ये रिवाइज करते हैं। कई लोग मुद्रा लगा के बैठते हैं, कई लोग यूं करके बैठते हैं, कोई लोग लंबा सांस खींच के बैठते हैं ना, तो अंत में लंबा सांस खींचेंगे क्या? वैसे सांस खींच रहा होगा नहीं, तो मतलब ये चलते फिरते अब हर समय हर सेकेंड अभ्यास चाहिए। योग करते समय नहीं, खाना खाते समय भी अभ्यास चाहिए, चलते फिरते, स्नान करते समय, ब्रश करते समय, शेव करते समय, खाना बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, कपड़े धोते समय, हर समय यह अभ्यास चाहिए। मैं स्थूल देने स्थूल देखो चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आते हैं। और फिर देह के संबंध, मेरे देह के संबंध ये माता पिता भाई बहन ये नहीं, मेरे पति पत्नी नहीं, वो है मेरा सर्व संबंध। मैं आत्मा हूं तो मेरा सर्व संबंध उसके साथ है। और एक एक संबंध की अनुभव हो, मां का संबंध उसके साथ अनुभव हो, मां क्या होती है, हमें इस मां का अनुभव तो बहुत है लौकिक मां का, उसके साथ हमारा कितना अनुभव है, मां के रूप में, बाप के रूप में कितना अनुभव है, टीचर के रूप में कितना अनुभव है, सतगुरु के रूप में कितना अनुभव है, शिक्षक के रूप में, साजन के रूप में कितना अनुभव है, पति के रूप में पत्नी के रूप में कितना अनुभव है, प्रेमी प्रेमिका के रूप में कितना अनुभव है उसके साथ, है ना, फ्रेंड के रूप में कितना अनुभव है, बड़े भाई के रूप में कितना अनुभव है, सर्जन के रूप में कितना, मेरी बीमारी मुझे आई तो उस बीमारी को ठीक करने में मैं कितना उसको यूज किया, वो कितना अनुभव मेरे साथ है उसका, बच्चे का रूप का अनुभव, अपने बच्चे का नहीं उस बच्चे का अनुभव कितना रूप का है, कितना गहराई से अनुभव है। ऐसे ही फिर देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव क्या है, ये पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह का संस्कार मैंने बताया वो आलस अल्पलापन। और जब तक इनको इनको फिर इनकी बजाय क्या होना चाहिए, देह का स्वभाव क्या होना चाहिए, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये सात एनर्जी ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की नेचर है, आत्मा के सात गुण उसकी नेचर है, जो चलते फिरते अनुभव होने चाहिए, करनी चाहिए। ये नहीं कि भट्टी में आए तो पांच दिन किया घर जाके फिर भूल गए, ऐसा नहीं, चलते फिरते इसका अभ्यास करना चाहिए। और फिर आत्मा का जो संस्कार क्या है, आत्मा का संस्कार आलस है क्या, आत्मा का संस्कार जागती ज्योत है, आप सो रहे हो, शरीर सो रहा है किंतु आत्मा जाग रही है, जागती ज्योत, सातवीं एनर्जी तब भी लगातार बह रही है बॉडी के रंग में, हर सेल में, तभी हार्ट काम कर रहा है, आप सो रहे तभी खाना पच रहा है, आप सो रहे तब भी किडनी काम कर रही है, आप सो रहे तब भी सांस चल रही है, नहीं चल रही, और आत्मा भी सो जाए तो क्या होगा, हा? तो ये आत्मा का संस्कार है, राइट, उस संस्कार को फील करो ना, चलते फिरते फील होना चाहिए ना कि मैं आत्मा जागती ज्योत हूं, उस ज्योत को फील करें ना, अलर्टनेस आत्मा का स्वभाव, अलर्ट, हमेशा मुंडे सुन रहे हो, अलर्ट होके सुनने की ना, कि सोते सोते सुनने की है, अलर्ट, जागती ज्योत, दूसरों में दोष निकालने का स्वभाव नहीं है आत्मा का, गुण गुण लेने का स्वभाव, गुण ग्राहकता का स्वभाव नेचर है, वो संस्कार आदत है, आत्मा की नेचर जो है हमेशा दूसरों से गुण गुण ग्रहण है। देह का स्वभाव की बात, बदलने की भावना नहीं, रहम दिली की भावना है आत्मा की, आत्मा का जो संस्कार है, निश्चय, अनुमान लगाना नहीं, विश्वास, चिंता करना नहीं, निश्चिंत, आत्मा माना निश्चिंत, भय नहीं, निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता, और ईर्ष्या द्वेष नहीं, सबके प्रति कल्याण की भावना, ये आत्मा का संस्कार है, उसको फील करना चलते फिरते। और देह के पदार्थ नहीं, देह के पदार्थ की बजाय क्या आत्मा का पदार्थ है, कि आत्मा तो ये सब पदार्थ ही रह जाएंगे, आत्मा के पदार्थ कौन से हैं, दैवी गुण, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, है ना, एक नामी, वैद्य से निकनामी, एक रस्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धीर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्तता, सबको सम्मान देना, सम्मान देके सबको सम्मान देना, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, क्षमा भाव, और आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, है ना, ये जो है आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का क्या है, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, ये आत्मा के पदार्थ है। तो चलते फिरते अपने आप को बार 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 हैमर करने का, बैठ के नहीं, तो जब तो पहला स्टेटमेंट देह देह के संबंध देह के स्वभाव संस्कार देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल या बुद्धि से निकालो फिर अपने को आत्मा समझ तब अपने को आत्मा समझ सकते हैं नहीं तो अपने को आत्मा हम समझ ही नहीं सकते तब अपने को आत्मा हम जान सकते हैं आत्मा को देख सकते हैं आत्मा को देख सकते हैं आप देख सकते हैं लोगों ने आपने सुना होगा ना ये खाके देख तो खाके देख रहे हैं क्या ये सुन के देख है ना ये सीढ़ी सुन के तो देखो आप तो दिखाई देती है क्या उस समय सुन के देख तो देखना मना अनुभव होना राइट फिर आत्मा अनुभव होगी कि आत्मा मैं यहां पे चमक रही हूं सितारा तो ये इस तरह से तो तब अपने को आत्मा समझ और जब आत्मा समझेंगे तो फिर बाप की फिर दिलाराम मेरे दिल में आता है अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये चार चीजें हैं तो बाबा इस दिल में कभी नहीं आ सकता है ये दिल सच्ची दिल नहीं है साफ दिल नहीं है सच्ची दिल साफ दिल माना जिस दिल में एक बाप के सिवा कुछ भी ना हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई या मेरा तो एक शिव बाबा एक दूसरी मेरी युगल तीसरा ना कोई ऐसे है क्या या मेरा तो एक शिव बाबा एक मेरा बच्चा तीसरा ना कोई ऐसा है क्या या एक मैं शिव बाबा एक मेरा धंधा तीसरा ना कोई ऐसा नहीं ये हंसने की बात नहीं बहुत सीरियसली अपने आप को रियलाइज करने की बात है नहीं तो हमारा अमृत वेला आज तक मैं समझता हूं शायद ही आप भी अपने आप से सच्चे दिल में हाथ नहीं उठाऊंगा पर आप अपने अंदर से गहरे से रियलाइज करके देखो हमारा अमृत वेला कैसा है ज्वालामुखी याद नहीं है ज्वालामुखी याद है तो विक्रम विनाश होना चाहिए जो कल हुआ था आज नहीं होना चाहिए नहीं जो बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण समान करते चलो सोचा और किया याद है ये लास्ट मुरली 25 नवंबर वाली मुरली 25 दिसंबर वाली मुरली लक्ष्य और लक्षण साथ साथ चले ऐसा प्रोग्राम बनाया मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ बढ़ाया तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाबा देख रहा है पुरुषार्थ में आगे बढ़ना संगम में आगे बढ़ने का समय और तीव्र पुरुषार्थी में ना तेजी से आगे बढ़ना सदा अटेंशन किस बात का इस बात का अटेंशन अपने को आत्मा समझ तब मां में कम याद करो सिर्फ मुझे याद करो और आज की मुरली में था यथार्थ याद क्या है अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को बिंदु कहां पर याद करो निराकारी घर में याद करो उससे विकर्म विनाश होते हैं उसे कहते हैं यथार्थ याद वो बीज रूप स्थिति है वो ज्वालामुखी याद है कि तो उसका रास्ता क्या है उसका रास्ता ये है तब अपने को आत्मा समझ परमात्मा मुझे मामे कम याद करो सिर्फ मुझे याद करो तब विक्रम विनाश होंगे और जब विक्रम विनाश होंगे तब तुम पावन सत्व प्रधान बनेंगे और जब पावन सत्व प्रधान जितना बनते जाओगे मेरे से उतना अधिक आप मिलन मना सकोगे ये बाबा कहते हैं बाबा ने कहा साथ है साथ रहेंगे साथ राज्य करेंगे तब बाप के साथ का अनुभव होगा नहीं तो बाप के साथ का अनुभव होगा क्या आज की मुरली में था साजन क्या कर रहा है शिव बाबा क्या सलोना साजन क्या करता है अपनी सजनियों को क्या कर रहा है हसीन बना रहा है ना हसीन मुसाफिर है ना तो उनको भी सुंदर बना रहा है ना कि तो कब बनेंगे कब हसीन बनेंगे आरटी के ब्लॉकेज कब खुलेंगे है ना सांस की बीमारी कब खत्म होगी डिप्रेशन कब खत्म होगा नींद गहरी कब आएगी कि चार घंटे की नींद में फ्रेश हो जाए सुबह उठ के नींद के झटके ना आए पावरफुल याद हो तो ये हमको करना पड़ेगा और एक बात और जब शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बनते हमारा बहुत अच्छा योग लगता है जब बाबा के बच्चे बनने के बाद दो तीन साल बाद क्या होता है कई बार के तीन महीने के बाद ही हमारा योग कैसा होता है अभी बहुत अच्छा तीन चार दिन बहुत अच्छा, फिर तीन चार दिन एकदम नीचे, फिर तीन चार दिन बहुत अच्छा, फिर तीन चार दिन फिर नीचे, तीन ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे अधिकतर ऐसे ही होता है। क्योंकि जब हम दो तीन साल तक तो बाबा हमें पालना देता है, छोटे बच्चों को आप पाल पोस के बड़ा करते हो, कुछ भी करे, गंदी हरकत करता है तो भी अच्छा लगता है, और दो तीन साल के बाद जब गंदी हरकतें करे तो एक थप्पड़ लगाते ना, नहीं तो ऐसा ही होता है। तो इसको बोलते शुरू शुरू में तो बोलते स्यूडो हनीमून पीरियड है ना, उसे बोलते हैं स्यूडो हनीमून पीरियड बोलते हैं उसको। और उसके बाद ब्राह्मणों की फेज शुरू होती है, केओटिक फेज शुरू होती है, केओटिक समझते हैं, केओटिक फेज, और फिर लास्ट में आते हैं रियल हनीमून पीरियड। जो 63 जन्म की जर्नी है ना हमारी बाबा के साथ, 63 जन्म में हमने हर जन्म में उल्टे विकर्म, हर जन्म में विकर्म किए हुए हैं, और उसमें हर जन्म में तीन फेज होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जवानी और बचपन और बुढ़ापे में हम कम गलत काम करते हैं, बचपन में अकल नहीं होती, बुढ़ापे में अकल ज्यादा आ जाती है ना, और जवानी में अकल होती नहीं, तो हम ज्यादा विकर्म करते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं, मान लीजिए 84 जन्म के पहले तो 84 जन्म में जो पाप किए ना, उसी को हम देखो, हमेशा ध्यान रखो, पहली स्थिति है विकर्माजीत, पहले हम विकर्माजीत बनेंगे, फिर कर्मातीत बनेंगे, कर्मातीत के बाद हम संपूर्ण बनेंगे, जब हमारी फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी, कर्मातीत बनने के बाद हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी, कर्मातीत बनते से हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी, कर्मातीत संपूर्ण और अव्यक्त फरिश्ता, ये चार चीजें इकट्ठी लगभग होती है, एक के बाद एक होती है, एक के बाद एक तो लगभग इकट्ठी होती है। कर्मातीत बनने के बाद बैटरी फुल चार्ज होती है, उसके बाद हम अव्यक्त बनते हैं, अव्यक्त माना फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होती, संकल्पों के द्वारा काम होते हैं, इशारों के द्वारा काम होते हैं, आंखों के इशारे, संकल्प, भावनाओं से लोग बदलते हैं, वृत्तियों के द्वारा परिवर्तन होता है, जो बाबा लास्ट ईयर से बोल रहे हैं, वृत्तियों के द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करो, तो फिर ये होता है, और तब हम फरिश्ता, तब फरिश्ता माना फिर हमारा किसी चीज से रिश्ता नहीं रहता, और तब हमारे साक्षात्कार सब जगह होते हैं, लास्ट की फेज है। अभी हमारे विक्रमाजीत अभी बने नहीं है, बन रहे हैं। तो 63 जन्म पहले 84 जन्म में जो बाबा के साथ हमारा जन्म है उसमें हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं, उसके विक्रम विनाश करते हुए बाबा ये हमें क्या करता है, अगर बाबा की चार नियम और चार मर्यादाओं पर एक्यूरेट चलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो, हमारी स्थिति किसी भी ब्राह्मण की स्थिति कभी भी ऐसे नहीं होती है, एक स्थिति कभी नहीं होती है, हमेशा ऊपर नीचे होगी। जैसे आप नीचे से माउंट आबू, आबू रोड से माउंट आबू आओ तो क्या होता है, सड़क कभी ऊपर को जा रही, कभी नीचे को जा रही, कभी ऊपर को जा रही, कभी नीचे को जा रही, फिर किंतु हम क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो भी ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो भी ऊपर आ रहे हैं, कि नीचे जा रहे हैं, वो नीचे में भी ऊपर है, धरती से तो ऊपर, आबू रोड से तो ऊपर है ना, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं। कि तू चार नियम चार मर्यादा को पकड़ के रखो, पहली नियम अमृत वेला कभी मिस मत करो, टाइम का ध्यान रखो, 3:30 के बाद सोने का मतलब नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे 1:30 बजे सोने का टाइम आए रात को तो भी 3:30 उठना है, धरती इधर से उधर हो जाए है ना, चाहे घर पर किसी डेथ हो जाए, शादी हो, कुछ प्लेन में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, 3:30 माना 3:30, ये नियम है बाबा का बनाया हुआ, इसमें कभी मिस ना हो। मुरली, दूसरा मुरली नियम है, मुरली कभी मिस ना हो, इंटरनेट पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, पीस ऑफ माइंड पे नहीं, क्लास में जाके मुरली सुनो। क्लास की मुरली का क्या महत्व है, क्लास में जब बाबा किसी भी बहन के द्वारा, भाई के द्वारा मुरली सुनाता है ना, जो है बाबा की मुरली, साथ में शक्ति भी देता है। आप अपने आप पढ़ रहे हो तो शक्ति नहीं आ रही, पीस ऑफ माइंड से, टीवी से शक्ति निकलती नहीं है क्या, निकलती है क्या, निकलती नहीं। जो बाबा की मुरली, जो क्लास, जो जो उसका जो जो है ना, जैसे आप साउंड रिकॉर्डिंग कहां करते हो, जाके कहां जाते हो साउंड रिकॉर्डिंग करने, कहां जाते हो, साउंड प्रूफ रूम में जाते हैं ना, तो एक्चुअली वो सेंटर जो है ना, वो साउंड प्रूफ रूम है, क्लासरूम, जिसमें वो रिकॉर्डिंग अंदर होती है। मुरली सुन लेना काफी है क्या, मुरली सुन के कर्म में आने से उसका महत्व है ना, खाना सामने आना काफी नहीं है, खाना 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 सामने रखो और ऑर्डर हो,
खबरदार जो हाथ लगाया था, तो क्या होगा? नहीं, आजकल तो ये ऑर्डर है ना, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, सामने गुलाब जामुन रखा है, क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर है? खबरदार जो हाथ लगाया है, नहीं, पकोड़ा रखा है, समोसा रखा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डॉक्टर ने क्या मना किया हुआ, नमक नहीं खाना है, तो क्या ऑर्डर है? खा सकते हैं, खा सकते हैं, पूरी रखी है सामने, हलवा रखा है, खा सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं, मुरली सुनना, मुरली एक बहुत अच्छे माध्यम में रिकॉर्ड हो सकती है, और मुरली खाली रिकॉर्ड होना नहीं, फिर जीवन में आने भी चाहिए ना। जो बाबा ने मुरली की, मुरली बाबा की श्रीमत है, बाबा का कहना और मेरा करना समान होना चाहिए। आज बाबा ने सुबह जो कहा मैंने किया, ज्ञान की बरसात धारणा करके करा सकते हैं ना, धारणा मेरे अंदर ही, दूसरों क्या कराऊंगा मैं धारणा। आप अपने बच्चों को ज्ञान देंगे, बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मी चुप रहो, आपका बहुत ज्ञान देखा है मैंने, है ना, आपसे ज्यादा गुस्सा तो आप मेरे से ज्यादा गुस्सा करती हो, गुस्सा सीख के आती हो क्लास में, क्या मुझे नहीं जाना ऐसी क्लास में, नहीं ऐसे कर्मों से सिखाना होता है बच्चों को, अपने घर वालों को कर्मों से सिखाओ, गुणों से सिखाओ, बोल के मत सिखाओ। हमारे जो वाचा पे बहुत जोर है ना, उससे कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा सुनने सुनने का समय खत्म हो गया है, ज्वालामुखी योग तब लगेगा जब ऐसे ऐसे हम इन पे चलेंगे तो लगेगा ना। ज्वालामुखी योग का टॉपिक तो मैंने अभी लिया ही नहीं है तो अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं, वो कभी फिर बाद में क्लास कराएंगे ना आपको, क्योंकि उसके पहले फाउंडेशन कोर्स तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं? अच्छा, ये जो मैंने बताया जरूरी था कि नहीं जरूरी था, मुझे बताओ, जरूरी था? तो ये जब तक हम नहीं आने तब तक नहीं हो सकता है अभ्यास। तो नियम अमृत वेला कभी मिस ना करो, कुछ भी हो जाए, बेशक बुखार हो, करो, मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठो, और वो भी ड्रेस बदल के बैठो, उस भावना से बैठो, बाल वगैरह कॉम करके बैठो ना। कई लोग बैठे वैसे उठे और बैठ गए, कोई फायदा नहीं है, है ना, तैयार होके बैठो ना। तुम प्रधानमंत्री से मिलने चाहो और ऐसे उठ के चले जाओ मिलने के लिए, क्या होगा मुझे बताओ? किससे मिलने जा रहे हो? भले उस स्थूल शरीर से मिलने जा रहे हो, पर वाइब्रेशन तो लेके जाते हो ना, नहीं तो वाइब्रेशन तो लेके आप भोजन, अब बाबा को भूख लगाते कैसे भूख लगाते हैं, भोजन लेके जाते हैं ना, कि कैसे ऐसे खाली लेके थाली लेके ले जा रहे कि बाबा भोग लगा रहे। तो वो स्थिति बना के जाओ ना, मन तैयार होने में टाइम, कुछ पुरुषार्थ करते उसमें टेंशन ना, किसके लिए तैयार हो रहे हैं, किस लिए हम अमृत वेले के बाबा से योग करना है? वो सारे जो हमारे जो यहाँ पर ना स्पेशल हमारे वो होते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जब मुंह धोते हो ना, ब्रश करते हो, वो सब जागृत हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है सेल्स। आंखों को पानी से धोते हो, उससे तोले से सिर को रगड़ते हो, कानों को रगड़ते हो, सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फिर सुस्ती आ नहीं सकती है, आधा घंटा तो कम से कम सुस्ती नहीं आ सकती है। और उस अलर्टनेस में अलर्ट है, सीधी कमर करके अच्छे से बैठो और फिर एबीसीडी का अभ्यास करो। और एबीसीडी का अभ्यास सुबह करने का नहीं, वैसे एबीसीडी का अभ्यास सारा दिन करने का, और विजुलाइज करने की बात नहीं, रियलाइज करो, रियलिटी को रियलाइज करो बार बार जो है दिन में। तो अमृत वेला से किया, फिर मुरली एकदम एक्यूरेट, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो, और फिर उसके बाद सारा दिन बाबा ने जो कहा उस मुरली का मनन, चिंतन, मंथन और सिमरण, मनन रिवाइज करो बार बार, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या, चिंतन माना चिंता लगाओ अपने अंदर, बाबा ने कहा मैंने तो नहीं किया, बाबा ने कहा बहुत मीठा बनो, बाबा ने सबसे प्यार करो, बाबा ने कहा सबके प्रति प्यार की भावना रखो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, मेरी तो शुभ भावना नहीं रहती है, मेरा क्या होगा, कैसे मैं शुभ भावना लेकर आऊं। फिर मंथन करो, कैसे बाबा मेरे अंदर ये भावना आए, जैसा आप कहते हो मैं तो ऐसा मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मंथन। फिर ये बाबा से अंदर अंदर बात करो, लगन लगाओ, इस खो जाओ इस चिंतन में, मंथन बाबा से पूछो अंदर अंदर। फिर जो जूस निकले ना अंदर, जो उसका जो बाबा ने बाबा ने के बच्चे बाबा को पूछो, बाबा मैं तो, जैसे मैं पूछता हूँ, बाबा मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आईसीयू में पेशेंट देखने पड़ते हैं, ओपीडी में पेशेंट देख रहा होता हूँ, वहां कैसे मैं मीठा बोलू, पेशेंट तो सुनते ही नहीं किसी की। मैं कहता हूँ ये खाओ, कहते वो कहते मैं ये खाऊंगा, कहते इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। मैं कहता हूँ चाय नहीं पियो, कहते चाय के बगैर डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आती, ये चाय के बगैर मेरे को पेट ही साफ नहीं होता। आजकल ऐसे लोग भी चाय के बगैर कहते नींद नहीं, चाय पी के सोना पड़ता है, कई लोग चाय पी के उठते हैं ना, तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैं बाबा उस कैसे उसको क्या करूं, वहां तो सारा दिन लोग चिल्लाते रहते हैं, आईसीयू के बाहर निकलता हूं, आईसीयू के बाहर इतने लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हमारे मरीज का क्या होगा, मैं वहां पे कैसे, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती, मैं क्या करूं। बच्चे अपने शक्ति पे, बाबा फिर मुझे बताता बच्चे तुम कैसे जो इस मुरली का महत्व, जो इस मुरली का जो मैंने तुम्हें काम कहा था, इसको कैसे अपने जीवन में लाओ, मंथन करके बताएगा। फिर सिमरन में ना वो जो बाबा ने बात बताई ना, मंथन जूस निकला, मक्खन निकला, उसको कार्य में लगाओ। सिमरन का बताइए ना, बाबा ने कहा, बाबा ने नहीं, उस जो बाबा ने कार्य दिया, जो आपको मंथन का पॉइंट दिया, उसको फिर कार्य करते हुए उस कार्य में लगे। सिमरन सिमरन सिमर सुख पाओ, किस समय, कार्य करते हुए, सिमर सिमर में ना कार्य में लगाओ, उसका सुख पाओ, वो फिर अंदर रिकॉर्ड होगा, उससे आपके अंदर इमोशनल चेंज और एटीट्यूडल चेंज आएगा, और उससे फिर अंदर परिवर्तन होगा, राइट। तब स्मृति स्वरूप स्थिति, तो मुरली के सुनने के 6 स्टेप हैं, पहला श्रवण सुबह सुनी, फिर सुनने के बाद वॉकिंग करते समय मनन रिवाइज करो, फिर चिंतन करो, फिर मंथन करो, और फिर सिमरण करो कार्य करते समय, और फिर शाम होते होते स्मृति स्वरूप बन जाओ। और सोने के पहले जो बाबा ने लास्ट मुरली में कहा, क्या कहा, सोने के पहले क्या करो, चेकिंग करो, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा से जो बाबा ने लक्ष्य, हमने लक्ष्य रखा, लक्षण प्रमाण किया, टेंशन रहा सारा दिन, फिर हिम्मत का पानी डालो उसके अंदर, उमंग उत्साह भरो, नहीं आज नहीं हुआ कल करूंगा, फिर ये बाबा से वायदा करके, बाबा के सामने हाथ उठाया था, है ना, और अमृत वेले, फिर उसको अमृत वेले उठते ही देखो, मैंने क्या, मेरा क्या अनुभव है, जो सारा दिन में गलती करते हैं अमृत वेले उठते ही पहले वो याद आती है, योग करते समय एकदम याद आती है। सूक्ष्म वतन बाबा के पास पहुंचते हैं ना जैसे हम लोग, तो बाबा पास में गोदी में नहीं लेता है, उस समय याद आएगा हाँ वो गलती की थी, फिर बाबा से खड़े खड़े माफी मांगते रहते हैं, माफी बाबा बस आज नहीं करेंगे, फिर थोड़ी देर बहुत 10 बार माफी मांग लेते हैं, फिर बाबा कहते हैं अब आ जाओ, फिर गोदी में लेता है ना। बहनों का तो शायद अनुभव ऐसा होगा, आपका भी होगा, किसी किसी का है ना। तो तब बाबा नहीं, तो बाबा हर बच्चे के लिए ऐसे करके बैठा होता है, लाइन नहीं होती, बाबा कहते ना लाइन होती है क्या, अकेला बैठा होता है ना, तो इतना प्यार की अनुभूति, ठीक है। तो करेंगे सभी ऐसे, तो अमृत वेला मुरली सारा दिन अटेंशन रखो और अविनाशी अटेंशन बनाने का, और फिर सोने के पहले पूरा पोता मेल देके लिखो लेटर, कल की परसों की मुरली भी था ना, लिखो क्या क्या गलती हुए, लिखो पूरा लेटर डिटेल में लिखो, और फिर साइन करके बाबा को आज की बात आज देके ही सोना है, फिर देके फिर चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ो, फिर याद करके सो जाओ, और 9:30 बजे काम करना शुरू कर दो, ये 9:45 तक करके सो जाओ, 15 मिनट में सारा काम हो जाता है, और फिर सो गए, फिर उसको होने के बाद सुबह 3:30 उठे, और फिर उठते ही मुंह धो के शुरू करो ये दिनचर्या। फिर 4 परहेज, पहला पवित्रता, टेलीविजन सबसे बड़ी अपवित्रता है, टेलीविजन टीवी सबसे बड़ी अपवित्रता है, इस सीरियल देखते हैं ना सभी, देखते हो लगभग ना, लगभग सभी देखते हैं, 90% देखते हैं, बाबा के बच्चे भी देखते हैं, महाभारत देखते हैं, कुछ और देखते हैं, शिव पुराण देखते हैं, क्या क्या चीज देखते हैं, फिर दूसरी चीजें भी देखना शुरू कर दे बीच बीच में ना, छोड़ दो अखबार देखना, मैगजीन देखना, कुछ और चीज, खाने पीने की इच्छा रखना, तो मतलब एक सबसे पहले तो पवित्रता, क्या मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक पवित्रता, दूसरा वैध संकल्प भी है पवित्रता, वैध संकल्प माना ये ऐसा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, बाबा का बच्चा होकर भी ऐसा करता है, उसका पार्ट वो जाने, ड्रामा के अंदर एक्यूरेट है, तो ये जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना अच्छा अमृत वेला होगा, उतनी अच्छी मुरली अंदर जाएगी, उतना अच्छा टेंशन रहेगा, उतना अच्छा सच्चाई से होता मिल दे पाएंगे। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन करना, बाबा की याद में बनाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय कॉफी पीना, ये छोड़ दो, ये सब तामसिक पदार्थ में आते हैं। फास्ट फूड्स खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, आइसक्रीम खाना, ये सब छोड़ो। सिंपल रोटी सब्जी आसक्ति के साथ मत खाओ, सिंपल भोजन खाओ। योगी का भोजन सात्विक भोजन, फल सब्जी अंकुरित दलिया दूध है ना, दाल, ये खाओ, चबा चबा के खाओ, आसक्ति से मत खाओ। अगर योगी बनना है तो ज्वालामुखी याद चाहिए तो है ना, नहीं तो नहीं। आसक्ति जहां होगी फिर वो योग में एक दूसरा संकल्प खाने का भी आ गया ना, तो बस दूसरा दो संकल्प हो गए, ज्वालामुखी होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है ना, ये फाउंडेशन कोर्स है ना, इसलिए क्या करना पड़ा, शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक, रासिक नहीं। पराठा पकौड़ा समोसा सात्विक है, रासिक है, उससे आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। और फिर सत्संग, बाबा और मुरली का संग, तीसरा कुछ भी संग मत करो, या ये मैगजीन पढ़ू, उसकी बात पढ़ू, उसकी बात पढ़ू, ये मुद्रा लगाऊं, ये प्राणायाम करूं, ये सब करूं, हठ योग करूं, कुछ मतलब नहीं है। एक बाबा ने जो कहा, बाबा फॉलो फादर, जो बाबा ने किया वो करो, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, नया कुछ स्थापन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चौथा दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा माना सत, वो मैंने बताया ना, बहुत सारे दैवी गुण जो बोले आपको, आपको और से भी बड़ी लिस्ट है, मैं तो थोड़े से बताए थे, तो उनको कभी गुस्सा मत करो। गुस्सा के तीन दिन तक योग नहीं लगेगा, एक बार मूड ऑफ किया पांच दिन तक योग नहीं लगेगा। किसके प्रति बदले की भावना रखी तो जब तक उसको माफ नहीं करोगे तब तक आपका योग लगेगा नहीं। जल्दीबाजी मत करो, ओके। ओम शांति। सॉरी मैंने कुछ आपको कुछ गरम गरम बातें बताई है ना, उसके लिए सॉरी है, पर ये बातें फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल है, ऐसी ऐसी बातें फैक्चुअल। तो मुरली कम से कम 21 बार रिवाइज करनी चाहिए है ना, 21 बार, 21 बार का मतलब 21 बार कम से कम एक एक पॉइंट तो रिवाइज करो, फिर मनन चिंतन करो ना, एक एक लाइन बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो फिर जब आपको इतना अभ्यास करोगे तो अपने आप ज्वालामुखी याद हो जाएगी। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, मैं समझती हूँ सभी बड़े खुश हो गए ना, है ना, खुश तो हुए सुनकर, लेकिन जो सुना अब उसको हमें अमल में भी लाना है कि योग के लिए कौन सी मुख्य धारणाएं, कौन से नियम मर्यादाएं ना, किन बातों का ध्यान रखना है। तो फाउंडेशन कोर्स फिर से हमारा पक्का करा दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई। अभी हम सभी बाबा को याद करेंगे, शाम को पुनः 5 से 5:30 योग होगा, 5:30 से 6:30 सतीश भाई का क्लास होगा। अभी डॉक्टर सतीश भाई नहीं, लेकिन हमारे जो मधुरवाणी ग्रुप के जो ना सतीश भाई बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, तो 5:30 से 6:30 फिर उनका क्लास होगा, और फिर 6:30 से योग रहेगा। तो इस तरह से शाम की दिनचर्या रहेगी। अभी हम सब बाबा को याद करेंगे, फिर सभी भोजन के लिए जाएंगे।